ओम शांति, ओम शांति, गुड इवनिंग। तो आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल वेलबींग का एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल वेलबींग। क्योंकि अगर हम बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति वो रिफ्लेक्ट करती है जो हम सोचते हैं, प्रकृति वो वाइब्रेशंस कैच करती हैं जो हम जनरेट कर रहे हैं। तो प्रकृति के अंदर वो सब ट्रांसफर जो हो रहा है वो जरूर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए हम फिजिकली भी जो कर्म कर रहे हैं वो भी हमारी प्रकृति को, एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। तो आज के इस टॉपिक पर हम और ज्यादा डीप चर्चा करेंगे और आज के इस टॉपिक पर चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बीके श्रीनिधि भाई। आप टीवी एंकर हैं शांतिवन से, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर बालकृष्णा पी शेट्टी जी, आप वाइस चांसलर हैं माला रेड्डी विश्वविद्यालय हैदराबाद से। आपको भी हम बहुत 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 स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अभी मैं बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि आकर के हमारे जो अतिथि गण हैं उनका स्वागत बैज के द्वारा और पुष्प गुच्छ के द्वारा करेंगे और साथ साथ में आप भी स्वागत की श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। कैसे? हाँ जी, ये हमारी एक्सरसाइज भी है और साथ साथ में खुशी को भी बढ़ाती है। आप ना हो तो ये प्रोग्राम भी नहीं है, तो आपका उससे भी अधिक स्वागत है। तो अभी हम इस सत्र की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, परमात्मा के स्मृति में बैठते हैं, उस परमात्मा को भी अपनी सभा में आमंत्रित करते हैं। ये 2 मिनट की साइलेंस वातावरण को भी शुद्ध कर देती, अंतर मन को भी शांत कर देती। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वातावरण के प्रति, क्योंकि अगर हम बात करें वातावरण के वेलबींग की, तो इसमें स्वच्छता भी आती है, क्लीनलीनेस, और साथ साथ में हाइजीन भी आता है, दोनों ही जरूरी हैं। तो कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, वो वाइब्रेशंस, वो शुद्ध वृत्ति, वो शुद्ध हमारी सोच के द्वारा कैसे इस वातावरण को भी हम प्रभावित कर सकते हैं, साथ साथ में और हमें कर्म के द्वारा भी स्वच्छता कैसे लानी चाहिए वातावरण में, साथ साथ में उस वेलबींग को कैसे मेंटेन करें, इस टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीनिधि भाई। आपको थोड़ा सा परिचित करा देते हैं। आप बचपन से ही ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं और 2009 से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी डेडिकेटेड रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली थ्रू वेरियस कॉन्फ्रेंसेज, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। और साथ साथ में आप ब्रह्मा कुमारीज में रेडियो जॉकी एंड वॉइस आर्टिस्ट हैं इन रेडियो मधुबन 90.4 FM में, और पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग के कई इन चैनल्स पर आपके कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें आप होस्ट एंड एंकर भी हैं। और साथ साथ में ब्रदर विहासा, जो हमारा एक मॉड्यूल है जिसके अंतर्गत हम वैल्यू एजुकेशन इन हेल्थ केयर, कैसे हम हेल्थ केयर में भी वैल्यूज को एसोसिएट कर सकते हैं, उसकी वर्कशॉप्स के भी आप नेशनल फैसिलिटेटर हैं। तो ब्रदर से हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना वक्तव्य हमारे सभी के बीच में रखें।
ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों से आप लोग जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं वो आज के समय के लिए एप्ट है, इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? बात खड़ा करें, सभी को लगता है। वंडरफुल, थैंक यू। जब हम इस शब्द को यूज करते हैं वेलबींग, तो इस वेलबींग से जुड़े हुए अनेक एस्पेक्ट्स को आपने समझा, इमोशनल वेलबींग के बारे में, अपने फिजिकल वेलबींग के बारे में, और हर दिन आप वेलबींग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं. आज का टॉपिक एनवायरमेंटल वेलबींग है. जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा फिजिकल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ 100% है? वो हाथ खड़ा करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5. ओके, थैंक यू. कितने लोगों को लगता है कि मेरा जो फिजिकल वेलबींग है वो 70-99% के बीच में है? 70-99. वेरी गुड, काफी ज्यादा लोग हैं इसमें. ओके, जो लोग ये समझते हैं कि हम 30% से 70% के बीच में हमारा फिजिकल वेलबींग है, वो हाथ खड़ा करें. वेरी गुड. और क्योंकि हम सब एजुकेशन के फील्ड से हैं, पासिंग मार्क्स तो कई जगह स्कूलों में 33 होता है, कहीं 35 होता है, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मार्क्स हैं, तो 30 से नीचे जिनको लगता है हम फेल हो चुके हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें. एनीबडी? नहीं, सभी पास हैं. वेरी गुड. तो फिजिकल हेल्थ को मेजर करने के लिए आपने कुछ पैरामीटर्स सोचे होंगे ना अपने मन में, कि मेरी बॉडी ऑप्टिमली काम करती है, मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई इश्यूज नहीं है. इसके आधार पर आपने कैलकुलेट किया होगा. सिमिलरली जब हम एनवायरमेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो हमारा एनवायरमेंट हमारे आसपास है. यस, आप में से कितने लोग शहरों में रहते हैं, वो हाथ खड़ा करें. पीपल हु कम फ्रॉम द सिटीज, सिटीज, टाउन्स. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू. तो आपका एनवायरमेंट जो है वो एक सिटी का एनवायरमेंट है. ओके, अब मैं आप लोगों से सेम वही क्वेश्चंस जो फिजिकल वेलबींग के थे वो क्वेश्चंस एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए पूछूंगा. आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हम 100% एनवायरमेंटल वेलबींग के वातावरण में रहते हैं, वो हाथ खड़ा करें. 1, 2, 3, 4. वेरी गुड. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का वातावरण, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उस वातावरण का वेलबींग 70-99 के बीच में है? वेरी गुड. आप में से कोई लोग दिल्ली से हैं, वो हाथ खड़ा करें. दिल्ली. मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहूंगा, आपकी एनवायरमेंटल वेलबींग का रेटिंग क्या है? बिलो 30%. बाकी लोग समझ सकते हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? सो दैट मीन्स यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड वॉट इज एनवायरमेंटल वेलबींग. आज हम एनवायरमेंटल वेलबींग को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को सुनते हैं. एक बहुत ही पॉपुलर टर्म जो आजकल चलने लगा है थैंक्स टू दिल्ली इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स. यस, आजकल एक्रोनिम्स का बड़ा जमाना है ना, तो हम कहते हैं AQI. वहां AQI बड़ा खराब है. जब दिल्ली का AQI खराब है तो लोग अपने शहर का भी AQI चेक करने लगते हैं कि हमारे यहां क्या चल रहा है. यस, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल अंडरस्टूड कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि इट इज लाइक स्मोकिंग 50 सिगरेट्स इन अ डे. दैट इज द काइंड ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट दिल्ली हैड. ठीक है, धीरे धीरे वो कम हुआ. नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर हमारे एनवायरमेंटल वेलबींग 100% नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? उंगली उठाएं. इट इज गुड, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा सो दैट हम चार बजे के सेशन में सो नहीं जाएं, इसलिए कुछ फिजिकल भी चीजें करते रहेंगे. ओके, वो जिम्मेदार हैं, मेरे पड़ोसी जिम्मेदार हैं. यस, जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ, लोगों ने कहा कि पंजाब के फार्मर्स जिम्मेदार हैं. ट्रू, दिल्ली वाले, यस एग्री, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स जिम्मेदार हैं, वो फसल के चीजें जला रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है. फिर कुछ लोगों ने कहा दिल्ली में ऑड इवन रूल भी चला. कितने लोगों को पता है ऑड इवन रूल, वो हाथ खड़ा करें. यस, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ऑड इवन रूल. हाँ, मतलब आपकी गाड़ी आप एक दिन ले जाएंगे, एक दिन आप नहीं ले जाएंगे, ऐसा. जिनके पास दो गाड़ियां हैं वो लोग ले जा सकते हैं, जिनके पास एक गाड़ी है वो नहीं ले जा सकते. इससे हमने क्या सोचा कि आज ये गाड़ी पोल्यूट कर रही है, कल ये गाड़ी पोल्यूट करेगी. उंगली किसके तरफ थी, ये गाड़ी वो गाड़ी, पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसी स्टेट. हद तो ये हो गई. ऑन अ वेरी कॉमिकल नोट, हमारा पड़ोसी मुल्क, जब लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया तो भी उन्होंने कहा कि पंजाब के फार्मर्स जो इंडिया में जला रहे हैं उसकी वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है. आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते होंगे, यू आर कनेक्टेड पीपल, तो आप ज्यादा जानकारी रखते हैं इन चीजों के बारे में. एंड जब बैन परिचय करा रहे थे कि ब्रह्मा कुमारीज का एक एनवायरमेंट इनिशिएटिव है, वो टीम बहुत सारे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, और वहां पर भी हम यही चीज देखते हैं. वेयर इज द फिंगर पॉइंटिंग, वेयर इज द फिंगर पॉइंटिंग. एनवायरमेंटल डैमेज है, क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? हम? वाह, आप लोग तो बड़ी जल्दी मान गए. भारत सरकार जिम्मेदार. आएंगे आएंगे, वहां पर भी आएंगे. सो व्हेन वी गो टू यूएन कॉन्फ्रेंसेस, यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस, जी, सो जब हम एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां पर भी ये फिंगर पॉइंटिंग होता है. वहां पर हम कहते हैं, लोगों को कहते हुए सुनने को मिलता है, जहां कंट्रीज एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि जो रिच नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो जिम्मेदार हैं, और इसकी वजह से उनको लेसर डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनको खामियाजा, उनका मुआवजा देना पड़ेगा. दिस इज द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दिस इज द पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स दैट हैपन्स. ओके, अब आई टेल यू स्मॉल स्टोरी. पिछले दिनों हमारे एक फ्रेंड से बात हुई, वो इटालियन है, originally from Italy, but now he works for an organization called Doctors Without Borders. Unki mother COVID ke dauran bimar hui, aur wo Italy mein Venice namak ek shahar mein rehti hain. Venice ka naam suna hai? Kitne logon ne Venice ka naam suna hai? Yes, very good. It is called as one of the most beautiful cities in the world. Aur sab kuch pani ke kinare, neharon pe basa hua shahar hai. और बहुत ज्यादा टूरिज्म है वहां पर. तो उन्होंने कहा कि इटली से बाहर गए हुए मुझे लगभग 15 साल हो चुके थे, और मेरी मदर की तबीयत जब बिगड़ी, तो क्योंकि मैं दुनिया भर में काम करता हूं, मैं पढ़ता है, तो कोविड के समय पर मैं अपने मदर का ख्याल रखने के लिए वापस वेनिस गया, क्योंकि ऐसी गई थी, क्योंकि वो खुद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको कोविड के दौरान भी, जब सब चल रहा कोविड में, कोई यहां से वहां ट्रैवल नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, ये सारी चीजें थी उस टाइम पर भी वो ट्रैवल कर सके। और वो वेनिस गए तो पहले अपने माँ के पास गए, हॉस्पिटल में उन्होंने देखा, उनकी मदर ठीक थी, उनको थोड़ा इन्फेक्शन था बट इट वॉज नथिंग डेंजरस। और 3-4 दिन बाद उनके मदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और वो उनको लेके उनके घर पे आ गए, उनके अपार्टमेंट में वेनिस में। और उस समय क्योंकि कोविड था तो कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं थे, और उन्होंने देखा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उस अपार्टमेंट में रहते हुए कि अपार्टमेंट के नीचे ही नहर बहती है, उस नहर में डॉल्फिन्स खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? डॉल्फिन्स खेल रहे हैं, ठीक है, रियल स्टोरी। अब मीडिया रिपोर्ट्स पे आते हैं, समथिंग क्लोजर होम। इंडिया में भी जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा, 3 हफ्ते के भीतर भीतर गंगा, जो इंडिया का नेशनल रिवर है, उस रिवर में गैंजेटिक डॉल्फिन्स, जो आम दिनों में कभी दिखाई ही नहीं देते, वो वापस रिवर में दिखाई देने लगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, टीवी चैनलों पे रिपोर्ट्स किए। आप में से कोई पंजाब से है? एनीबडी फ्रॉम पंजाब? यस, थैंक यू। पंजाब में एक शहर है जलंधर, और वहां ये रिपोर्टिंग की गई कोविड के दौरान कि एक लंबे साल के बाद, कई दशकों के बाद, जलंधर से धौलाधार की पहाड़ियां नजर आने लगी हैं, विच आर द पार्ट ऑफ द लोअर हिमालयस। व्हाई? क्यों नजर आने लगी थी? कि हम टेलीस्कोप लेके देख रहे थे? नहीं, क्यों नजर आने लगी थी? पोल्यूशन कम हो गया था, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो कम हो गई थी। द सेम अप्लाइड टू द रिटर्न ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स, द सेम अप्लाइड टू द रिटर्न ऑफ डॉल्फिन्स इन द लगून्स ऑफ वेनिस। सो अब हम सभी जानते हैं कि हम सब कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए। If we think that we are part of the problem, then I would say no. Are we part of the problem? Are we part of the problem? Yes. I'm not pointing fingers here and there. I'm just looking at my own thing. Am I part of the problem? The good news is, if you're part of the problem, then you're also part of the solution. Because if a problem mere paas hai, तो सॉल्यूशन भी मेरे पास है। एंड यही चीज एनवायरमेंटल वेलबींग का हिस्सा है। आप लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन हमारे पास है? है? कितने लोगों को लगता है कि हां सॉल्यूशन हमारे पास है? हैंड्स डाउन, थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम ही हमारे पास है, सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है? वो लोग हाथ खड़ा करें। अब किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया? अच्छा, एक। या, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे छोटा जो है ऑडियंस में, उसने हाथ उठाया, क्योंकि वो कहते हैं कि ना मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूं, ना मैं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, बच्चे मन के सच्चे। वेरी नाइस। सो सिंस वी आर ऑल एजुकेटर्स, वी कम फ्रॉम the world where we are educating the younger generation, schools, colleges, universities mein. So there, this dialogue has become a part and parcel of our education policy also, jahan pe hum environmental protection ke bare mein, environmental sciences ke bare mein bachchon ko bahut chote umr se padhate hain. Padhate hain? Yes? Yes? School going kids? Environmental sciences subject hai unke liye. So they are very well aware of what is happening around the world. So when we know what is happening around the world, we know what the problems are, we could also be the part of the solution. अच्छा, very quickly, क्योंकि हम सभी well versed हैं इन चीजों से, what can we do to solve this problem? Environmental well-being आज नहीं है, 100% होना चाहिए, वो 100% नहीं है. उसको 100% करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Before we come to the environmental one, let us get to the easy one. कल शाम को आपने डॉक्टर स्वपन गुप्ता के साथ सेशन किया, yes? Yes, उससे पहले सिस्टर शिवानी के साथ सेशन था, yes? अपनी फिजिकल वेलबींग को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. क्या क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेरी गुड. प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं. मेंटल वेलबींग को अच्छा रखेंगे तो फिजिकल भी अच्छा रहेगा. फिर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, वेरी गुड. पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और बीच बीच में हेल्थ चेकअप कर सकते हैं. कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वेरी नाइस. स्विमिंग कर सकते हैं, वेरी गुड. फिजिकल के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके, वेरी गुड. अब फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं भी है, ऑप्टिमम नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको पता है हमको क्या करना है. एनवायरमेंटल वेलबींग, प्रकृति हमारी, उसके वेलबींग को भी सही करने के लिए, उस एनवायरमेंटल वेलबींग को वापस रिस्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फाइव एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करें, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें. थ्री आर्स, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज. ओके, वेरी नाइस. वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करें, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन, वेरी गुड. यज्ञ, मेडिटेशन, सोलार यूजिंग, एक दिन, यस, एक दिन साइकिलिंग करें, व्हीकल यूज नहीं करें. हाँ, वो चीजें जो एनवायरमेंट को हार्म करती हैं उनका इस्तेमाल को चेंज कर दें. कार्बन, कार्बन एमिशंस कम करना है, यस, यस, की बिल्डिंग्स जो हम कर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली व्हीकल्स, रिड्यूस बर्निंग, पब्लिक अवेयरनेस, वेरी गुड, वंडरफुल. आपको तो ऑलरेडी एनवायरमेंटल वेलबींग पता है, ये सेशन क्यों रखा है? वेरी ब्यूटिफुली सेड. शी इज वेरी राइटली पॉइंटेड यहां, बट यहां पर भी मुझे ये करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. आई अप्रिशिएट दैट ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी, वेरी नाइस. मेनी पीपल इन द वर्ल्ड कॉल इट एज इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस मतलब जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम पैरालाइज हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, क्या करूं, कि ये कैसे हो पाएगा. ऑल ऑफ दैट हैपन्स. Not just to you, it happens to me, it happens to everyone around. So what do we do? What do we do? Very nice. So इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग द इनिशिएटिव बट ऑल्सो सस्टेनिंग इट, नॉट जस्ट क्रिएटिंग इट बट ऑल्सो उसकी पालना करना है. वी शुड डिसिप्लिन आवर सेल्फ. वेरी गुड, टू डिसिप्लिन. So if we discipline ourselves, then it happens.
I know, you know, now when we go abroad, we follow. So this discipline is a very thing, a very important thing, because all jitne measures humne bataye hain, they all depend upon us. Ki hum din mein kitni baar kya karte hain, kya nahi karte hain. To usse mera khayal hai ki problem bahut jaldi solve hogi, because it all depends upon everybody, not on the government. Not on the organizations. अगर हम घर के अंदर अपना individuals भी अगर अपने आप को संभाल लें तो मेरा ख्याल है environmental के अंदर काफी ज्यादा progress हो जाएगा.
Wonderful. Thank you. He mentioned about discipline. बहुत सारे लोगों ने जो environmental well-being की अभी बात कही उसमें एक चीज आता है energy को save करने के बारे में. Have you heard of this? Energy conservation सुना है? ये term सुना है? भारत सरकार की तरफ से अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं. समय समय पर हम उसके एड्स वगैरह देखते हैं, बिजली बचाओ. यस सुना है, एडवर्टाइजमेंट्स पे आपने देखा होगा. या अर्थ डे इसी महीने अप्रैल में हमने सेलिब्रेट किया. आई विल टेक यू टू अ रिफ्लेक्शन. ओके, and just visualize this thing. एक व्यक्ति है जिसके घर में दो बच्चे हैं, वाइफ है, वो सुबह सुबह उठे हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, मैम अपने घर का खाना वगैरह बना के टिफिन बॉक्स ये वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं घर का जो कुछ भी है. 7:30 हो रहा है एंड दे हैव टू लीव द हाउस. एवरीबडी हैज टू लीव द हाउस. सेवन ट्वेंटी फाइव हो गया है. एक बच्चा है जो जिद कर रहा है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है. ओके, पापा उसके ऊपर गुस्सा होते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाएगा तो यहां घर पे कौन देखेगा तुमको. जो दूसरा बच्चा है वो कहता है कि पापा रूम में लाइट सब चालू है, पंखा चल रहा है, बाथरूम में गीजर चालू है, उसको आपने भी बंद नहीं किया है. पापा उसको बोलते हैं मैं तुम्हारे भाई को संभालूं कि लाइट को संभालूं कि पंखे को संभालूं. रियल लाइफ इंस्टेंसेस फॉर अ पर्सन हु इज अवेयर, जिनको जानकारी है कि ऊर्जा बचाना है, एनवायरमेंट को हेल्प करना है, प्रकृति का ख्याल रखना है. बट इफ दैट पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, डू यू थिंक ही विल हैव इनफ टाइम और एनर्जी to care for switching off the fans, the geysers, taking care of the environment? Yes? No? People who think yes, raise your hands. Thank you. People who say no, raise your hands. People who did not raise hands, ki hum jage hue hain, ye batane ke liye haath khada kar le. It is all right if you did not raise hands. It is a good sign. That means that you are thinking. कि आप सोच रहे हैं. This is what happens on the street also. हम सबको पता है कि सिग्नल लाल हो गया है, काफी ट्रैफिक है, गाड़ी बंद कर लेनी चाहिए. बट हमारे मन में कुछ और चीज चल रही है. ओहो, सिग्नल भी अभी गिरना था, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, सुबह जल्दी निकलना था, बच्चे भी तैयार नहीं होते हैं. Do you think about saving that excess fuel that is burning at the signal? No. Why? Because your mind is burning with something else. And this is where the Brahma Kumaris have been helping people on their own journey, like we have been helped ourselves, that it all begins with our awareness here. It is not just about knowing. And rightly, as you said here, it is about we wanting to do things but not able to do it. We want to be disciplined but we lack that discipline. Today there is, it is not that we don't want to, we want to. Hum chahte hain ki prakriti sundar ho, swachh ho, prakriti ka khayal rakha jaye. Magar jab karne ki baat aati hai, we are bogged down by so many things in between. And that is where it has to sink in here. Brain mein hai information. What is CO2? What is CO2? Carbon dioxide. आप सबको पूछा जाए कि रिवर पोल्यूशन के कारण बताएं, पांच कारण लिस्ट कर दें, आप तुरंत लिस्ट कर देंगे. नेचर को हेल्प करने के पांच तरीके, यू विल राइट इट डाउन क्विकली. यू हैव दैट इंफॉर्मेशन हियर. बट व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज इंप्लीमेंटेड, व्हेन इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड बिकम्स एक्शन, दैट इज व्हेन इंपैक्ट इज क्रिएटेड. और वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वो अवेयरनेस चाहिए, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स चाहिए. एंड दिस इज नॉट न्यू टू इंडिया. व्हाट द ब्रह्मा कुमारीज आर टॉकिंग अबाउट हैज बीन पार्ट ऑफ इंडिया दिस ईथोस अपब्रिंगिंग कल्चर फॉर मेनी ईयर्स. इट्स जस्ट दैट इन द रीसेंट फ्यू ईयर्स, फ्यू डिकेड्स, वी हैव काइंड ऑफ लॉस्ट ऑफ टच विद इट. Many people, somebody said we should do a yajna. After every yajna, after every ceremony of religious importance, we would do a shanti path. People have heard of shanti path? Yes, many people have heard about it. Of course, many religious traditions have similar things, but since I'm talking about India, in India we have had shanti path. In shanti path, we would recite. Not just recite from the mouth, but also create that awareness inside. Bhu shanti, vayu shanti, apah shanti, vanaspataya shanti, aushadaya shanti, shanti reva shanti. People remember this? People have heard this? Kabhi suna hai humne is cheez ko? Very good. So this is that awareness. Today we worship our rivers. Just recently Kumbh Mela finished hua. Did the river clean us or did we pollute the river? Question. Kumbh Mela mein 60 crore log gaye. Kumbh Mela mein nahane se hamare paap dhul jayenge. Bahut achhi manyata hai. Did the river clean us or did we pollute the river? Scientific log hain aap, logically educators hain, ek well formed mind se, intellect se judge karein. What happened? During the Kumbh Mela, at the end of the Kumbh Mela, we all heard when the water samples were taken, what was in the water sample? High rates of bacteria, which are very harmful. Human impact on environment is there. Agar hum apne impact ko kam karna chahte hain, to hume sirf apne aap ko thoda badalna padega. Jo self discipline ki baat aa rahi thi, wo discipline kaise aayega? Hum karna to chahte hain. आप में से कितने लोग सुबह 4 बजे उठ रहे हैं यहां आने के बाद, वो हाथ खड़ा करें. वेरी गुड, वेरी नाइस. कितने लोगों को day 1 पे ऐसा लगा कि आज नहीं उठा जाएगा? यस, फ्यू पीपल. वेरी गुड. कितने लोगों ने अपने आप को जबरदस्ती धक्का लगाया, नहीं आज जाना ही है. डोंट बी शाय. सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, दैट द पावर ऑफ अवर थॉट्स प्रीसीड्स अवर मैटर. अगर मैं सुबह उठ के ये थॉट लेता हूं दैट आई एम हेल्दी, माई बॉडी that is made up of the five elements of nature responds to my thoughts. Might not happen in one day, but slowly, slowly, it'll start taking that signal. Yes or no? Yes? The effects of thought on nature, science ne aaj bahut sare experiments karke dikhaya hai. Dr. Emoto ka naam suna hai aap logon ne? Kuch logon ne suna hai? Jinhone suna hai, woh haath khada kare. Yes? He was here in this very campus, on this very stage. Of course, he had already demonstrated the experiment beforehand, but he also did it here on this stage. Just a glass of water, everybody sitting in the hall, sat, meditated, sent good vibrations to the water. The thoughts of peace, love. And when that water was crystallized, you could see so beautiful crystals formed out of it. So, our ancient practice of saying, not just saying, but creating those thoughts of peace for the elements of nature, created an impact. I'll give you a conundrum, let's say, hypothetically. आजकल हम लोग ये चीजें पूछते हैं ना कि हाउ मेनी ऑफ यू आर बीच पीपल, बीच पर्सन, सागर किनारा बहुत पसंद है. ओके, पीपल हु आर माउंटेन पीपल, या वेरी गुड. यूजुअली दो कैटेगरी कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स इन बिटवीन देयर इज सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, काम का बोझ है, बहुत कुछ है, बट हम नेचर में जाते हैं, एक हॉलीडे पे जाते हैं, शिमला चले जाएंगे, माउंट आबू चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, सागर किनारे वॉक कर लेंगे, पार्क में वॉक कर लेंगे, हमारा मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगने लगता है. कितने लोग ऐसे हैं? नेचर हील्स यू, यस, इट हेल्प्स यू रिलैक्स, ब्रिंग्स यू अ सेंस ऑफ काम एंड पीस इन योर बॉडी, ऑल्सो ऑन योर माइंड. यस, अगर नेचर आपके ऊपर ये इफेक्ट डाल सकता है, आपके मन को वो शांत कर सकता है, क्या आपका मन नेचर को शांत कर पाएगा? थ्योरेटिकली, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन इज बी इक्वल टू ए? यस और नो? द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया न्यू दिस. वी हैव टेम्पररली फॉरगॉटन. And it is time for us to do that again. Can we do it? Every day, can I sit for 5 minutes, probably in the nature? Aaj shaam ko aapka evening meditation nature mein hi hai, wo isiliye hai, to practically experience it. When I receive something good from nature, I give it back to her. Can I become a server of the nature? Main prakriti ki seva kar sakta hu? कर सकता हूं, कर सकता हूं. लेट्स डू इट वेरी क्विकली, वन मिनट. सिट अप राइट, सिट अप राइट, स्ट्रेट. आई विल गिव यू फ्यू थॉट्स एंड उन्हीं थॉट्स को आप अपने मन में क्रिएट करें. आई एम अ बीइंग ऑफ पीस. आई क्रिएट दीज थॉट्स ऑफ काम and stability. Main shant swaroop hu. Main apne man mein shanti ke prakampano ko janm deta hu. Meri ye shanti ki lehrein फैलते हुए इस वातावरण को, इस प्रकृति को शांत करते हैं, उसे सुख देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रकृति का, जो मुझे पोषण देती है, मुझे साफ हवा देती है, जीवनदायिनी जल का स्रोत मुझे उपलब्ध कराती है। यह प्रकृति शुद्ध है, शांत है, स्वच्छ है, पवित्र है, परिपूर्ण है। ओम शांति।
थैंक यू सो मच ब्रदर श्रीनिधि, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है। मुझे हमारे फाउंडर दादा लेखराज जी, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे, उनकी एक बहुत अच्छी बात याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे, जो हमें भी टीचिंग्स में कहा जाता है, यू कैन सेव एवरीथिंग फ्रॉम योर फिजिकल डूइंग्स एंड ऑल्सो फ्रॉम योर थॉट लेवल ऑफ वर्किंग। इसमें दो चीज़ें ब्रदर ने भी कवर की कि छोटी छोटी सेविंग्स हम करें, स्विच ऑफ करें लाइट को, जहाँ एनर्जी वेस्ट जा रही है उसको हम ठीक करें, जहाँ पर हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं वो भी हम मेंटेन करें, और साथ साथ हम अपने मन से अपनी वृत्ति यानी कि इनर एटीट्यूड, ये इनर एटीट्यूड बनता है थॉट्स की रिपीटेड सर्कल जो क्रिएट होते हैं, और रिपीटेड साइकिल ऑफ थॉट्स क्रिएट्स योर इनर एटीट्यूड या वृत्ति जिसको कहते हैं। एंड दिस वृत्ति, इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं जो कि प्रकृति कैच करती है। तो हम 5 मिनट डेली, 5 से 10 मिनट डेली निकालें अपने 5 एलिमेंट्स की प्रकृति के लिए, क्योंकि ये प्रकृति सिर्फ नेचर ही प्रकृति नहीं है, मेरी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। तो एनवायरमेंटल वेलबींग सिर्फ एनवायरमेंट को ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सटल में मेरे को भी जरूर वाइब्रेशंस मिलेंगे, मैं अपनी बॉडी को भी वाइब्रेशंस सेंड कर रही हूँ। सो थैंक यू ब्रदर, आपने इतना ब्यूटीफुली ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं अब इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर बालकृष्णा पी शेट्टी जी को। आप वाइस चांसलर है माला रेड्डी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और फॉर्मर वाइस चांसलर हैं श्री सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। आप प्रोफेसर भी हैं रेडियोलॉजी के, और साथ साथ आपने ट्रेनिंग किया है रेडियोलॉजी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, एंड आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर स्टडी एंड अपने प्रैक्टिकल रिसर्चेस भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सिटी स्कैन, MRIs और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बॉडीज पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैं ब्रदर को इनवाइट करना चाहूंगी, ब्रदर आप भी आए और हमारे मध्य आप अपना वक्तव्य रखें।
धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। यस, फॉर फ्यू मिनट्स आई वुड लाइक टू टॉक। बेसिकली आई एम ए डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट एंड बहुत सारा हेल्थ चेकअप करता हूँ। मैंने महीने ऑलमोस्ट 100-200 पेशेंट्स को हेल्थ चेकअप करता हूँ। सो आपका आज का डिस्कशन है वेलबींग। लेट्स से वी डिस्कस्ड इनफ, श्रीनिधि सर डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स एंड विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। व्हाट इज वेलबींग? आई विल नॉट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। सो वेलबींग मीन्स हेल्थ। We have got lot of definitions on health. You know, most important definition is from which organization? Oh, it's World Health Organization, WHO. Anybody knows the WHO definition? There may be some doctors here. Okay, let me say that. Health is defined as complete physical, mental, social, spiritual. Fortunately, they are not included economical, because these are all coming from the Western countries. No, they don't want us to be economically well-being. They want us to poor only. They don't want us to be rich. Because this is that's the way the Western countries managed all these Asian countries. So it is physical, mental, social, spiritual well-being, not merely the absence of disease. That is a definition of WHO. If you take Ayurveda, it is defined as, you know, they define it as that, you know, sama dhatu, sama prakriti, all those things will come. And if you take homeopathy, there'll be another definition. If you see Siddha, there'll be another definition. But all of you sitting here, I don't think you'll be worried too much about the definition of health, isn't it? If I go into the definition of health, I would like to say, somebody will be having diabetes, somebody having, blood pressure, somebody will be having mental. None of us may be considered healthy if you consider all these definitions. So let me go through some of the patients whom I have come across, and you will come to know what is real health. Last month I saw one about 38-year-old lady. She had come for MRI of the knee joint. I did MRI of the knee joint. And after the MRI of the knee joint, I gave the report, and usually we radiologists give the report, and then they show it to the doctors, and doctor will give the medicine. But she said, no, I want to speak to Dr. Shetty. So she came to my room, and she asked me, Dr. Saab, kya problem hai? Itna dard aata hai na, knee joint mein kya problem hai? I told him there is wear and tear, and what is called as osteoarthritis. So you got wear and tear of the knee joint, that's why you got. She got surprised. Doctor, 38 years in such a age. I'm not 55, 65 or something like that. 38 years wear and tear? Then I asked, how? Question is how? Any time you have got a health problem, everybody, we as doctors know how, what is a problem, but nobody knows how and why. That is very difficult to answer. Then she asked, why doctor? Then I said, I usually ask, you do work? She said, no, I don't do work. Then what you do? Then her husband was sitting there. She goes to the gym. Oh, you go to the gym. Okay, you don't do work. Uh-huh. Then how much you pay for the, then who does the work at home? My housemaid does the work. Okay. So how much you pay for the housemaid? I pay about 6,000 rupees per month. Okay. How much you paid for this MRI scan? Some 9,000 rupees. Okay, you don't do your work, you pay money for the housemaid, and you go to the gym lifting weights. And if you do like this, one day the God will say, you don't need a knee joint at all, and I may have to put a knee joint. This is the point of what I'm telling is, God has created everybody to do the work. I'll come to that. So many times patients will come, full liver test, sir, doctor. A liver, sir, alkaline phosphatase, A phosphatase, bilirubin, A sab kya hai. Kaisa hai my liver acha kaam karta hai? I immediately ask the question, aap acha kaam karte ho? If you do the work properly, your liver also will properly, your heart also will properly, each and every organ will work properly. This is the main concept I have seen. What I am telling is, only when you work, because whatever it is, even if you say Darwin's evolution, each and every organ in the human body is developed to work. Many people said, what is health? Of course, we say health is good food, good water, good air. Initially we said, good water, oh, you eat so much of calories, eat so much of proteins, eat so much of fat. Still, we had so many diseases. Then we said, you eat so much of vitamins. We as doctors started prescribing vitamins right, left and center, B-complex, or every patient we used to give B-complex. We used to see the mother carrying children, so much weight loss, so much of thin, and the mothers used to sell milk from their house and buy vitamins and give it to their children. So, skin and bone. What I'm telling is, not this food. Then they said, okay, you have to eat a lot of fibers. Then they started eating fibers. Then they said, you need to do a lot of exercise. People started walking, cycling, jogging. I see in Bangalore, there's a big park called, anybody knows? Kabban Park. People come in Mercedes car and start walking in the Kabban Park. And who will be doing yesterday? Shivani Madam also told, instead of making our own food, we started eating the food which is coming in from the dabba. We all start eating Swiggy, Zomato. Our children will be eating all these things. Our parents will be eating. Our husbands will be eating. Or our wives may be eating. And we will be going round the park, round the park, round the park. Other day one lady came with so much of blood sugar reports. Doctor sahab, ye sab mera blood sugar report hai. Kya karte ho? Again, we have got a park there, what is called Sankey Tank. 150 means one round. 180 means two round. 200 sugar means three rounds. As the sugar is increasing, she is going round, 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 round the park. I said, stop this. Go and do the work. Work is different than exercise. That is the only one point I would to convey today. Why do my yoga, meditation, everything? Why do I sleep at night? So that I'll get up in the morning to do my job. Why do I eat? So that I'll have my energy to do the work. Why I do meditation? So that I am calm and quiet to do my work. Why I do yoga, meditation, everything, I'll tell you only one point I've seen. Everything is to do my work. Karmanyeva adhikaraste mahafaleshu kadachana. And that's what Lord Krishna told. Don't worry whom you are killing. Are you killing your guru? Are you killing your teacher? Are you killing your grandfather? No. Do your work. That is the most important. Even in, I think I got two more minutes. Even in Draupadi Vastraapharan, that is one point I would always tell. You know, what Draupadi did? Draupadi did not pray for God at all. She will do everything. She will fight with Dushasana. She will fight, she will go to Gandhari Devi and tell her, Gandhari, my mother-in-law, she will look at me, what you are doing? She will go to Duryodhana's wife. She will go everywhere. She will do all the work what is possible. Finally, she will go to Bhishmacharya and will ask Bhishmacharya, is it correct whether any husband has got a right to pledge his wife after losing himself? And Bhishmacharya also will not be able to answer that question. And will say, each and every point as far as dharma is considered, your husband Dharmaraya only can answer. He escapes. So what I am telling, when she fails in everything, then, hey Bhagavan, then Lord Krishna makes it Akshayambhara. That is what is called Draupadi Vastraapharana. So only when you work, I can give you 101 reasons, only when work will protect you. There is a beautiful Japanese, that is here also somebody told, we have got diarrhea of suggestions, but serious constipation of implementation. Serious constipation. We can give any number of lectures. We can advise anything you want as vice chancellors. But as far as the implementation and sustainability is considered, there is a lot of problem. So when I became the vice chancellor, what we did, we talk about green. I told, okay, now all students will, instead of doing walkathon, marathon, you do what is called workathon. I can show you some of the slides here, but I don't have time. Each and every MBBS student, soon after his admission, within the first month, he'll put one plant. Everybody puts plants, that is not a big thing here. But he'll put the plant, and 4.5 years during his course, he'll take care of that plant. And the plant which becomes 4.5 years age, the photo of the plant will be printed in his graduation certificate. I am fighting with the UGC. To show that this photo of the student will be there in the graduation certificate. It is also called as green graduation. I am fighting the UGC, but one more country, Philippine country, made it mandatory for all students to have a photograph of their plant in their graduation certificate. This is what I call graduation. I'll tell you only one thing which I tell you. There's a beautiful proverb in Japanese. I tell all my students, I would like to repeat here also. If one can do it, I can also do it. If one cannot do it, I should do it. But what's happening here? If one can do it, let him do it. If one cannot do it, why should I do it? Or how should I do it? Remember, work is the only thing which gives you happiness and health. And today our definition of health is, if you can get up in the morning and if you are ready to go for the work, you are the healthy person, number one. And if you enjoy that work, you are the most happiest person in this world. You know, the most richest person is not happy, The wealthiest person also not happy. The most powerful person also not healthy. Even the saints also not happy. Who is the person who is happy? The farmer who goes to the khet, who kheti baji karte morning to evening, he is the most happiest person. Always pray for God to give you enough work. Do that work and I think you will be always healthy and happy. That's what the message I would like.
Thank you so much, brother. मैं अभी बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज के हमारे अतिथि को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित करें. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग ऑल्सो. एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन.